एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम सबके जीवन को कहीं ना कहीं छूता है। उम्र का बढ़ना, गंभीर बीमारियां और हाँ, जिंदगी का अंतिम पड़ाव। ये ऐसे पड़ाव हैं जिनसे हम सभी को कभी ना कभी तो गुजरना ही पड़ता है ना, चाहे अपने लिए हो या फिर अपने किसी प्रिय के लिए।
बिल्कुल, और ये सिर्फ व्यक्तिगत मसले नहीं हैं, इनमें समाज और हमारी जो मेडिकल व्यवस्था है उससे जुड़े कई महत्वपूर्ण सवाल भी उठते हैं। इस बातचीत के लिए हमने आधार बनाया है डॉक्टर अतुल गवांडी की एक बहुत ही जानी मानी और प्रभावशाली किताब को। नाम है बीइंग मॉर्टल, मेडिसिन एंड व्हाट मैटर्स इन द एंड। ये किताब इस बात पर रोशनी डालती है कि आजकल की जो मॉडर्न मेडिसिन है वो उम्र बढ़ने और मृत्यु को कैसे देखती है, और क्या हम इस पूरी प्रक्रिया में कुछ बहुत जरूरी चीजें भूलते जा रहे हैं।
हाँ, और ये आज के जमाने में तो और भी ज्यादा जरूरी हो गया मुझे लगता है। देखिए ना, मेडिकल साइंस ने यकीनन हमारी उम्र लंबी कर दी है, इसमें कोई शक नहीं। हम पहले से कई ज्यादा साल जी रहे हैं, पर सवाल ये उठता है कि क्या उन बढ़े हुए सालों में वो जो जीवन की गुणवत्ता है, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ, वो भी उतनी बेहतर हुई है।
सही बात है, क्या लंबा जीवन हमेशा बेहतर जीवन होता है? ये एक मुश्किल सवाल है।
बिल्कुल, यही वो मुश्किल सवाल है जो गवांडे अपनी किताब में उठाते हैं। वो पूछते हैं कि भाई जब अंत करीब हो तो हमारे लिए असल में क्या मायने रखता है, सिर्फ सांसें लेते रहना या कुछ और भी?
और देखिए, इस गंभीर विषय पर लिखने वाले डॉक्टर अतुल गवांडे कोई बाहर के व्यक्ति नहीं है। वो खुद एक जाने माने सर्जन हैं, बॉस्टन के एक बड़े अस्पताल ब्रिगम एंड वुमेन्स हॉस्पिटल वहां प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही वो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और हार्वर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ में प्रोफेसर भी हैं और हेल्थ पॉलिसीज पर रिसर्च भी करते हैं।
इतना ही नहीं,
हाँ, और वो द न्यूयॉर्कर जैसी जो मशहूर पत्रिका है उसके लिए हेल्थ और साइंस पर रेगुलरली लिखते भी हैं।
हाँ, उनकी सबसे खास बात मुझे यही लगती है कि वो मेडिकल दुनिया के अंदर के आदमी होकर भी अपने ही पेशे की कमियों और चुनौतियों पर इतनी ईमानदारी से, इतनी साफ गोई से बात करते हैं। वो सिर्फ एक डॉक्टर की नज़र से नहीं देखते, बल्कि एक इंसान की संवेदना के साथ लिखते हैं। उनकी लिखाई में वो तकनीकी जानकारी और मानवीय पहलू का एक गजब का बैलेंस मिलता है।
बिल्कुल, और इस किताब के लिए उनकी जो योग्यता है वो सिर्फ उनके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने अपने पिता, जो खुद भी एक डॉक्टर थे, उनकी आखिरी बीमारी और मृत्यु को बहुत नजदीक से जिया है, बहुत करीब से, और उस व्यक्तिगत अनुभव ने उन्हें शायद चिकित्सा व्यवस्था की उन खामियों को महसूस कराया जो शायद सिर्फ एक डॉक्टर के तौर पर नजर नहीं आती।
अच्छा, तो ये किताब एक डॉक्टर और एक बेटे दोनों के नजरिए का संगम है।
हाँ बिल्कुल, इसलिए इतनी विश्वसनीय और असरदार बन जाती है।
तो चले अब सीधे किताब के दिल में उतरते हैं। बीइंग मॉर्टल असल में इस बुनियादी सवाल से जूझती है कि हम अपनी जिंदगी का जो आखिरी दौर है उसे कैसे बेहतर बना सकते हैं, ज्यादा सार्थक और जहां तक हो सके आरामदायक। गवांडे आधुनिक चिकित्सा के उस रवैये की, आप कह सकती हैं, आलोचना करते हैं जो अक्सर सिर्फ जिंदगी को किसी भी तरह लंबा खींचने पर जोर देता है।
हाँ,
भले ही इसके लिए मरीज की इच्छाओं, उसकी आजादी, मतलब स्वायत्तता और उसकी गरिमा, डिग्निटी को नजरअंदाज ही क्यों ना करना पड़े।
बिल्कुल, गवांडे का एक बड़ा तर्क यह है कि हमने उम्र बढ़ने और मृत्यु को एक मेडिकल प्रॉब्लम मान लिया है, मतलब एक ऐसी समस्या जिसका इलाज ढूंढना है, जिसे ठीक करना है, जबकि सच तो यह है कि ये जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, एक सच्चाई है, और हमारी आज की जो व्यवस्थाएं हैं, जैसे अस्पताल या नर्सिंग होम, वो सुरक्षा और देखभाल के नाम पर अनजाने में ही सही लोगों से वो चीजें छीन लेती हैं जो जीवन को जीने लायक बनाती हैं।
जैसे
अपनी मर्जी से छोटे मोटे फैसले लेना, किसी काम का कोई उद्देश्य होना, अपनेपन का एहसास और थोड़ी बहुत स्वतंत्रता, ये सब कम हो जाता है।
अच्छा, तो ये किताब हमें एक तरह की यात्रा पर ले जाती है। इसमें बुढ़ापे और मृत्यु को लेकर समाज का जो बदलता नजरिया है उसका इतिहास भी है।
हाँ,
उम्र के साथ शरीर में आने वाले बदलावों का विज्ञान है, और सबसे बढ़कर उन मरीजों और उनके परिवारों की सच्ची कहानियां जो इन मुश्किल हालात से गुजरे हैं।
सही का, गवांडे बताते हैं कि कैसे नर्सिंग होम जैसी संस्थाएं बनी और कैसे उनके जवाब में फिर असिस्टेड लिविंग या हॉस्पिस केयर जैसे विकल्प सामने आए। पर यह सिर्फ कमियां गिनाने वाली किताब नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा मानवीय रास्ते की तलाश भी करती है।
तो चलिए अब किताब के कुछ खास हिस्सों और उनके जो मुख्य विचार हैं उनको थोड़ा और करीब से देखते हैं।
हाँ जरूर, पहले हिस्से द इंडिपेंडेंट सेल्फ में गवांडे इस बात पर ध्यान दिलाते हैं कि हमारा समाज, खासकर पश्चिमी समाज, आत्मनिर्भरता को कितना ऊंचा दर्जा देता है। इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी मानी जाती है, लेकिन बुढ़ापे की हकीकत यह है कि हम धीरे धीरे दूसरों पर निर्भर होते जाते हैं। यहीं पर वो टकराव शुरू होता है, हमारी आजादी की चाहत और शरीर की बदलती जरूरतें।
ये तो है। इसके बाद एक हिस्सा है जो उम्र के साथ शरीर में आने वाले बदलाव पर बात करता है, जिसे गवांडे ने शीर्षक दिया है थिंग्स फॉल अपार्ट। यहाँ वो फ्रिजिलिटी यानी कमजोरी की बात करते हैं। ये किसी एक बीमारी का नाम नहीं है, बल्कि उम्र के साथ शरीर की वो कह सकते हैं सार्विक कमजोरी है।
हाँ, एक तरह की नाजुकता।
हाँ, नाजुकता जिससे हम झटकों को झेल नहीं पाते और छोटे मोटे गिरने या इन्फेक्शन भी बहुत गंभीर हो जाते हैं। ये हमें दिखाता है कि कैसे परिवार अक्सर बुजुर्गों की सुरक्षा और उनकी आजादी के बीच फंस जाते हैं।
हाँ, ये दुविधा बहुत आम है। उन्हें गिरने से बचाएं या उन्हें अपनी मर्जी से जीने दें, मुश्किल फैसला है।
बिल्कुल।
और इसी निर्भरता की बात से जुड़ा है नर्सिंग होम का मुद्दा, जिस पर डिपेंडेंस अध्याय में चर्चा है। गवांडे बताते हैं कि कैसे सुरक्षा और मेडिकल निगरानी पर इतना ज्यादा जोर दिया गया कि नर्सिंग होम अक्सर जीने की जगह कम और सुरक्षित रखने की संस्था ज्यादा बन गए।
इसका नतीजा क्या हुआ?
एक सुधारक के शब्दों में, वहां रहने वालों के लिए तीन बड़ी समस्याएं पैदा हो गईं: अकेलापन, लाचारी और बोरियत।
ओहो, अकेलापन, लाचारी और बोरियत, ये तो बहुत दुखद है।
हाँ, क्योंकि जीवन का नियंत्रण उनके हाथ से निकल गया, सब कुछ नियमों में बंध गया।
लेकिन क्या कोई और रास्ता नहीं है?
असिस्टेंस अध्याय में गवांडे असिस्टेड लिविंग जैसे विकल्पों को देखते हैं। इनका मकसद तो यही था कि लोगों को नर्सिंग होम से ज्यादा आजादी दी जाए, अपना कमरा, अपना सामान, आने जाने की थोड़ी छूट, इस तरह की चीजें। हाँ, इरादा तो यही था, लेकिन गवांडे ये भी दिखाते हैं कि कैसे वक्त के साथ बढ़ते नियमों और लागत के दबाव में कई असिस्टेड लिविंग सुविधाएं भी काफी हद तक नर्सिंग होम जैसी ही प्रतिबंधात्मक हो गई।
अच्छा, मतलब इरादा नेक था पर अमल में चुनौतियां आ गईं।
हाँ, बिल्कुल। पर उम्मीद की किरण भी है। ए बेटर लाइफ अध्याय में डॉक्टर बिल थॉमस के ईडन अल्टरनेटिव जैसे कुछ प्रयोगों का जिक्र है।
हाँ, ये मैंने पढ़ा था, ये वाकई कमाल का था,
है ना? थॉमस ने नर्सिंग होम के उस नीरस बेजान माहौल को बदलने के लिए क्या किया, वहां पौधे लगवाए, कुत्ते बिल्ली और यहां तक के पक्षी भी पाले,
और बच्चों को भी आने दिया।
हाँ, पास के स्कूल के बच्चों को आने जाने दिया। नतीजा चौंकाने वाला था। वहां रहने वाले बुजुर्गों की दवाइयां कम हो गई, वो ज्यादा खुश रहने लगे, उनका अकेलापन कम हुआ।
वाओ,
ये साफ तौर पर साबित करता है कि जीवन में जुड़ाव, थोड़ी जिम्मेदारी और कुछ करने का मकसद होना कितना जरूरी है, चाहे आपकी उम्र कोई भी क्यों ना हो।
वो बहुत पॉजिटिव बात है। फिर किताब का रुख गंभीर बीमारियों और जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण की तरफ मुड़ता है, लेटिंग गो अध्याय में। यहाँ गवांडे उस मुश्किल सच्चाई का सामना कराते हैं कि चिकित्सा जगत अक्सर बहुत आक्रामक इलाज तब भी जारी रखता है जब उसके सफल होने की उम्मीद लगभग न के बराबर हो, और वो इलाज मरीज को सिर्फ तकलीफ दे रहा हो। ये उस सोच पर सवाल उठाता है कि हमें आखिरी दम तक लड़ना चाहिए।
हाँ, ये लड़ने वाली मानसिकता।
हाँ, गवांडे पूछते हैं, क्या कभी कभी इलाज रोकना और आराम पर ध्यान देना ज्यादा समझदारी और इंसानियत का काम नहीं है?
बिल्कुल। और शायद किताब का सबसे जरूरी और सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा है हार्ड कॉन्वर्सेशंस, यानी कठिन बातचीत। यहाँ गवांडे जोर देते हैं कि डॉक्टरों, मरीजों और परिवारों के बीच बीमारी की असलियत क्या है, इलाज के क्या विकल्प हैं, उनके फायदे नुकसान क्या हो सकते हैं, और सबसे अहम, मरीज खुद क्या चाहता है, उसकी प्राथमिकताएं क्या हैं।
इन सब पर खुलकर और ईमानदारी से बात होनी चाहिए।
हाँ, और ये बातचीत आसान नहीं होती, इसीलिए इसे कठिन कहा गया है। गवांडे यहाँ प्रशामक देखभाल यानी पैलिएटिव केयर की विशेषज्ञ सूजन ब्लॉक से सीखते हैं।
पैलिएटिव केयर, इसका मतलब है गंभीर बीमारी में दर्द और लक्षणों को कम करने पर ध्यान देना और जीवन की गुणवत्ता बनाए रखना, भले ही बीमारी का इलाज संभव न हो।
बिल्कुल सही। और सूजन ब्लॉक जैसे विशेषज्ञ सही सवाल पूछने पर जोर देते हैं, जैसे, आप अपनी स्थिति के बारे में क्या समझते हैं, आपको किस बात का डर लग रहा है, आपकी उम्मीदें क्या हैं, आप किस हद तक इलाज के लिए तैयार हैं और क्या चीज आपके लिए बिल्कुल नामंजूर है।
ये सवाल, ये तो बड़े सीधे और मुश्किल सवाल है।
हैं, पर जरूरी हैं, क्योंकि ये मरीज को वापस नियंत्रण देते हैं, उसकी आवाज को महत्व देते हैं।
समझ गई। और इसी कड़ी में आता है आखिरी अध्याय, करेज यानी साहस। यहाँ गवांडे अपने पिता की कहानी के जरिए इन सारे विचारों को एक साथ लाते हैं। उनके पिता ने अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ तय की।
क्या थी वो प्राथमिकताएं?
वो अपना सामाजिक जीवन जारी रखना चाहते थे, परिवार के साथ वक्त बिताना चाहते थे और किसी भी कीमत पर लकवाग्रस्त नहीं होना चाहते थे। ये उनके लिए सबसे ज़रूरी था और इन प्राथमिकताओं के आधार पर उन्होंने फैसला किया। हाँ, उन्होंने आक्रामक इलाज की जगह घर पर हॉस्पिस केयर चुना। हॉस्पिस केयर भी पैलिएटिव केयर का ही एक रूप है जो जीवन के बिल्कुल अंतिम चरण में आराम और गरिमा पर केंद्रित होता है।
अच्छा,
गवांडे दिखाते हैं कि असली साहस शायद मौत से सिर्फ लड़ते रहने में नहीं है, बल्कि ये जानने में है कि आपके लिए क्या मायने रखता है और अंत तक उसी के हिसाब से जीने का फैसला करने में है।
ये बहुत गहरी बात है। तो इस पूरी किताब से कुछ बहुत गहरे और जरूरी संदेश निकल कर आते हैं ना?
हाँ, बिल्कुल।
पहला और शायद सबसे बड़ा ये कि हमने उम्र बढ़ने और मृत्यु का जरूरत से ज्यादा मेडिकलीकरण कर दिया है। हमने इसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानने के बजाय एक ऐसी बीमारी समझ लिया है जिसे हर हाल में हराना है, हर कीमत पर।
बिल्कुल। और दूसरा अहम संदेश जो मुझे लगा वो है इंसान की स्वायत्तता, यानी अपनी मर्जी से जीने की ज़रूरत और एक उद्देश्य की ज़रूरत। लोगों को सिर्फ सुरक्षित रख देना काफ़ी नहीं है, उन्हें ये महसूस होना चाहिए कि उनके जीवन का नियंत्रण अब भी उनके हाथ में है और उनके होने का कोई मतलब है, कोई पर्पस है।
सही।
और ये बात भारत जैसे समाज के लिए भी बहुत मायने रखती है, जहाँ पारंपरिक पारिवारिक संरचनाएं बदल रही हैं, जॉइंट फैमिलीज कम हो रही हैं और बुजुर्गों की देखभाल के नए तरीके सोचने पड़ रहे हैं। क्या हम उनकी इच्छाओं और गरिमा का वाकई ध्यान रख पा रहे हैं? ये सवाल उठता है।
बिल्कुल उठता है। तीसरा मुद्दा जो सामने आता है वो है जीवन की गुणवत्ता बनाम उसकी लंबाई का, क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी। क्या ज्यादा जीना हमेशा बेहतर होता है या कम समय ही सही पर एक सार्थक, आरामदायक और अपनी शर्तों पर जिया गया जीवन ज्यादा कीमती है? ये किताब हमें इस पर सोचने को मजबूर करती है कि हम असल में किस चीज को प्राथमिकता दें।
वो कठिन बातचीत जिससे हम अक्सर बचते हैं, कतराते हैं।
हाँ, बिल्कुल कतराते हैं।
वो असल में डर बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि स्थिति को संभालने और ये पक्का करने के लिए जरूरी है कि आगे जो भी हो वो मरीज की इच्छा के मुताबिक हो। और ये बातचीत तब करनी चाहिए जब वक्त हो, ना कि बिल्कुल ऐन संकट के समय।
बिल्कुल सही। और आखिर में ये किताब साहस को एक नई नजर से देखने को कहती है। ये वो साहस है जो अपनी सीमाओं को पहचानता है और मुश्किल हालात में भी अपनी कीमतों, अपने वैल्यूज के आधार पर फैसले लेता है डर के बावजूद। और साथ ही ये उम्मीद भी जगाती है कि देखभाल के बेहतर तरीके मुमकिन है, जैसा कि वो ईडन ऑल्टरनेटिव वाले उदाहरण ने दिखाया। हम मौजूदा व्यवस्था को पत्थर की लकीर मानकर ना बैठें, बदलाव संभव है।
किताब में कई ऐसी बातें हैं जो एकदम दिमाग में बैठ जाती हैं, जैसे एक गवांडे का ये कहना कि हमारा अंतिम लक्ष्य एक अच्छी मौत नहीं बल्कि अंत तक एक अच्छा जीवन है। ये बात पूरी बहस का रुख ही मोड़ देती है ना, फोकस मौत से हटकर आखिरी पलों तक जिंदगी की क्वालिटी पर आ जाता है।
हाँ, ये बहुत शक्तिशाली विचार है। और एक और बात जो मुझे बहुत अहम लगी वो ये कि चिकित्सा में हमारा काम सिर्फ स्वास्थ्य और अस्तित्व सुनिश्चित करना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के समग्र कल्याण, वेलबींग को संभव बनाना है। ये डॉक्टरों और पूरी हेल्थ केयर सिस्टम की जिम्मेदारी को कितना बड़ा बना देता है। सिर्फ बीमारी ठीक करना नहीं, बल्कि इंसान को बेहतर महसूस कराना, उसकी ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखना।
सही कहा। और साहस की वो परिभाषा भी याद रखने लायक है। साहस का मतलब है डर और उम्मीद दोनों को जानते हुए ताकत बनाए रखना। ये नहीं कि डरना मना है, बल्कि डर के बावजूद उम्मीद थामे रखना और आगे बढ़ना।
बिल्कुल। और नर्सिंग होम के बारे में वो जो कहते हैं कि अकेलापन, लाचारी और बोरियत वहां की तीन सबसे बड़ी विपत्तियां हैं, ये किसी भी संस्थागत देखभाल, मतलब इंस्टीट्यूशनल केयर पर एक बहुत तीखी टिप्पणी है, जहां नियम और रूटीन अक्सर इंसानी जरूरतों पर हावी हो जाते हैं।
और मेडिकल सीमाओं पर उनकी वो बात, एक युद्ध जिसे आप जीत नहीं सकते उसमें आप ऐसा सेनापति नहीं चाहते जो पूर्ण विनाश तक लड़े। ये कितनी साफ गोई से कहता है कि कब रुकना और आराम पर ध्यान देना ज्यादा बुद्धिमानी है, ज्यादा मानवीय है।
हाँ, तो सवाल ये उठता है कि हम इन सब विचारों का अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या करें, कैसे अपनाएं इनको? सबसे पहले तो शायद स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेते वक्त चाहे अपने लिए हों या किसी अपने के लिए, सिर्फ ये ना पूछें कि क्या क्या इलाज किया जा सकता है, बल्कि ये जरूर सोचें कि इस इंसान की इच्छाओं, जरूरतों और जीवन मूल्यों को देखते हुए क्या करना सही रहेगा। क्या ये इलाज सिर्फ जिंदगी के कुछ दिन बढ़ाएगा या वाकई उसे जीने लायक बनाएगा?
जरूरी भी परिवार में उन कठिन बातों को शुरू करना, और इसके लिए किसी संकट का इंतजार न करें। पहले से ही अपनी इच्छाओं के बारे में सोचें और अपनों से बात करें। अपने बुजुर्ग माता पिता या रिश्तेदारों से पूछें कि अगर वो कभी गंभीर रूप से बीमार पड़ जाएं तो वो कैसी देखभाल चाहेंगे। क्या वो घर पर रहना पसंद करेंगे, किन हालात में अस्पताल जाना चाहेंगे।
हाँ, ये बातचीत जरूरी है, और यहीं पर एडवांस डायरेक्टिव या लिविंग विल जैसी चीजें काम आ सकती हैं।
हाँ, एडवांस डायरेक्टिव
ये एक तरह का कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें कोई व्यक्ति पहले से लिख सकता है कि भविष्य में अगर वो खुद फैसले लेने की हालत में ना रहे तो वो किस तरह का मेडिकल इलाज चाहता है या नहीं चाहता है। इसके बारे में जानकारी लेना और सोचना जरूरी है।
ये वाकई बहुत जरूरी है,
और जो लोग हेल्थ केयर में काम करते हैं उनके लिए तो ये किताब एक सीधा संदेश है। मरीज को सिर्फ एक बीमारी के तौर पर ना देखें, बल्कि एक पूरे इंसान के तौर पर देखें। उसके शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण सब पर ध्यान दें। जरा चिकित्सा यानी जेरियाट्रिक्स और प्रशामक देखभाल पैलिएटिव केयर के सिद्धांतों और खासकर संवाद के तरीकों को सीखना और अपनाना आज की जरूरत है।
बिल्कुल, और आखिर में व्यक्तिगत स्तर पर देखें तो ये किताब हमें अपनी नश्वरता, मतलब इस सच्चाई कि हम सब एक दिन मरेंगे, उसके बारे में ईमानदारी से सोचने का एक मौका देती है। ये ख्याल शायद थोड़ा असहज लगे शुरू में, पर ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे लिए जिंदगी में सच में क्या जरूरी है, हम अपना बचा हुआ वक्त कैसे बिताना चाहते हैं, हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं।
मेरे लिए इस किताब से सबसे बड़ा सबक यही है कि मेडिकल साइंस का असली मकसद सिर्फ जीवन लंबा करना नहीं होना चाहिए। ये उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं हो सकता। उसका काम लोगों को जीवन के हर पड़ाव पर और खासकर आखिरी पड़ाव पर गरिमा, स्वायत्तता और एक उद्देश्य के साथ जीने में मदद करना होना चाहिए। तकनीक इंसान की सेवा के लिए है, इंसान तकनीक के लिए नहीं।
और मेरे लिए वो कठिन बातचीत वाली बात बहुत असरदार रही। उनसे भागने की बजाय उन्हें अपने और अपनों के लिए नियंत्रण वापस पाने का एक जरिया समझना, एक तरह से एम्पावरमेंट का टूल। ये किताब याद दिलाती है कि अंत शायद उतना महत्वपूर्ण न हो जितना अंत तक का सफर। जीवन के आखिरी पल तक जीवन का अर्थ बना रहना चाहिए।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।